अंग्रेजी संस्करण का आमुख। यह निबंध 1922 ईस्वी में लिखा गया था। कुछ अपरिहार्य परिस्थितियों के चलते मैं इसका पुनरीक्षण नहीं कर पाया और इसे पूरा नहीं कर पाया। अब मैं इसे उसी रूप में प्रकाशित कर रहा हूँ जिस रूप में इसे लिखा गया था, क्योंकि अब मैं यह निरर्थक उम्मीद नहीं कर सकता कि मैं मध्यकाल की भारतीय सभ्यता के इतिहास के लेखन की अपनी मूल योजना के लिए निकट भविष्य में पर्याप्त समय और ध्यान लगा सकूंगा। भारतीय सभ्यता का विकास बहुत रुचिकर विषय है और अब इतिहासकार इसकी ओर ध्यान देने लगे हैं। यह रुचि केवल सामयिक नहीं है, जो भारत के मौजूदा जीवन में होने वाले टकराव के कारण पैदा हुई है। इस विषय का ज्यादा व्यापक और ज्यादा गहरा दार्शनिक महत्व है। हम आज आदिम और प्रागैतिहासिक संस्कृतियों के देशांतर की समस्याओं का तथा अतीत में और वर्तमान में प्रजापतियों तथा सभ्यताओं के झगड़ों का अध्ययन कर रहे हैं। भारत का इतिहास उन अनेक विभिन्न संस्कृतियों के प्रभाव का अच्छा उदाहरण है, जो आपसी सामंजस्य की प्रक्रिया से क्रमशः बदल गई। समाजशास्त्र और इतिहास के जो विद्यार्थी मानव मस्तिष्क के आदान प्रदानों को और किसी समाज के रिवाजों, धर्म, साहित्य तथा कला में प्रदर्शित सांस्कृतिक संपर्कों के प्रभाव को समझने का प्रयास करते हैं, उन्हें भारत के ऐसे इतिहास की ओर ध्यान देना चाहिए। कोई सामान्यीकरण करने से पहले तथ्यों को एकत्र करना जरूरी है। मैंने इस निबंध में मुख्यतः तथ्यों को एकत्र करने का प्रयास किया है, और वह भी उन तथ्यों को जो सभ्यता के दो पहलुओं से संबंधित हैं, धर्म और कला। मुझे इस प्रयास के अधूरेपन का एहसास है। इसका एक कारण तो यह है कि पड़ताल की प्रकृति ही ऐसी थी, अर्थात सांस्कृतिक तथ्य अस्पष्टता से काफी ढके होते हैं। एक और कारण मेरी निजी कठिनाइयां थी। यदि इस निबंध को पांडुलिपि के रूप में पढ़ने और इसे प्रकाशन योग्य समझने वाले मेरे मित्रों से मुझे प्रोत्साहन न मिला होता, तो यह निबंध मेज पर अभी भी धूल खाता रहता। पृष्ठ संख्या 10। इंडेक्स तैयार करने के लिए और पांडुलिपि में सुधार करने के लिए मैं डॉक्टर बनारसी प्रसाद सक्सेना को और इसके प्रूफ पढ़ने के लिए श्री भगवत दयाल को मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं इसका प्रकाशन करने के लिए द इंडियन प्रेस के श्री एच के घोष का ऋणी हूँ। ताराचंद।